दीक्षांत ने जैसे ही माही के मुंह से सुना कि जानवी नहीं मिल रही है, उसके पूरे चेहरे का रंग उड़ गया। वो झट से सोफे से उठते हुए बोला, माही क्या बकवास कर रही हो, मैंने उसे तुम्हारे साथ भेजा था, तो फिर कैसे नहीं मिल रही है? जरूर तुमने अच्छे से नहीं देखा होगा, चलो हम दोनों एक साथ जाकर देखते हैं, भाभी जान यहीं कहीं होंगी। ये बोलने के साथ ही दीक्षांत ने सारे बॉडीगार्ड्स को भी शॉपिंग मॉल में हर जगह ढूंढने के लिए कहा। 10 मिनट बाद ही सब लोग वापस उस वेटिंग एरिया में पहुंच चुके थे, क्योंकि किसी को भी जानवी नहीं मिली थी। दीक्षांत ने जल्दी से अमर को कॉल लगाया। उधर से रिंग हो रही थी, पर अमर फोन नहीं उठा रहा था। दीक्षांत जल्दी से शॉपिंग मॉल के मैनेजर के पास जाते हुए बोला, मुझे यहाँ की CCTV फुटेज चाहिए, अगले 5 मिनट में। अगर थोड़ी सी भी देर की तो तुम्हारी डेड बॉडी यहाँ मिलेगी, जल्दी करो। मैनेजर ने घबराते हुए अपनी CCTV फुटेज वेटिंग एरिया में मंगवाए। वहीं दीक्षांत परेशानी से अपने एक हाथ को अपनी गर्दन पर रगड़ते हुए अमर के कॉल उठाने का इंतजार कर रहा था। माही का पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और उसका दिल घबराहट के मारे बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ रहा था। वो अपने दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश कर रही थी कि क्या जानवी उसके सामने से तो नहीं गई थी, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद वहां CCTV फुटेज आ चुकी थी और ठीक उसी वक्त पर अमर ने भी कॉल उठा लिया था। दीक्षांत घबराते हुए कहा, अमर मुझे शॉपिंग मॉल में भाभी जान नहीं मिल रही हैं, मैं CCTV फुटेज देख रहा हूँ। अमर जो कार ड्राइव कर रहा था उसने अचानक गाड़ी पर ब्रेक लगाते हुए कहा, दीक्षांत तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम क्या बोल रहे हो, इतने सारे बॉडीगार्ड के बीच जानवी कहाँ जा सकती है? वहीं दीक्षांत की नज़रें स्क्रीन पर टकटकी लगाकर देख रही थी। उसने जैसे ही देखा कि चेंजिंग रूम से बुरखे के साथ दो लड़कियां निकली हैं, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वहीं सेल्स गर्ल ने उन्हें रोका था। वो भी जल्दी से स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोली, हाँ सर, ये लड़की थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गई थी। मैंने इसे रोका भी था कि ये हमारा इमरजेंसी मेडिकल रूम इस्तेमाल कर सकती है, पर इसने मना कर दिया। दीक्षांत जल्दी से बाहर की तरफ दौड़ते हुए बोला, ये बुरखे वाली फोटोज निकालो और सारे पुलिस स्टेशन में सेंड कर दो। सारे सिग्नल्स पर हर गाड़ी को रुकवा कर देखो कि ये बुरखे वाली लड़कियां कहां गई हैं। अमर अभी भी कॉल पर सुन रहा था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो गाड़ी में अकेला था और उसकी गाड़ी सुनसान रास्ते पर खड़ी थी, क्योंकि वो समर्थ को पहले ही रावत मेंशन छोड़कर आ चुका था। वो अब जानवी की शॉपिंग में हेल्प करने के लिए शॉपिंग मॉल की तरफ जा रहा था। उधर से दीक्षांत ने लगभग चिल्लाने वाली आवाज में कहा, अमर अमर मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? मैंने तुम्हें एक फोटो सेंड की है, देखो वो लड़की भाभी जान को बुरखा पहनकर लेकर गई है और उन्हें ज्यादा देर नहीं हुई है। तुम शॉपिंग मॉल आ रहे थे ना, अगर वो तुम्हारी साइड जा रही होगी तो तुम्हें रास्ते में जरूर मिल जाएगी। अमर तुम्हें मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, अमर ने जल्दी से हड़बड़ाकर कहा, हाँ मैं देखता हूँ। इतना बोलने के साथ ही अमर ने कॉल कट कर दिया। उसकी आंखों में जलन होने लगी थी, इसलिए उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, जिसके साथ ही उसे जलन को नमी देने के लिए उसकी आंखों में आंसू भर आए। अमर ने स्टीयरिंग पर अपना सर रखते हुए कहा, जान कहाँ हो तुम? इतना बोलते हुए अमर ने जल्दी से जानवी का नंबर फोन के स्क्रीन पर निकाला, लेकिन फिर उसने कॉल नहीं किया। उसने कुछ सोचते हुए धीरे से कहा, नहीं, अगर कॉल कर लिया तो उन लोगों को पता चल जाएगा, अगर वो रास्ते में हुए तो फोन कहीं गिरा देंगे, मुझे कुछ और करना चाहिए। इतना बोलकर अमर ने एक बार फिर दीक्षांत को कॉल किया और जानवी के नंबर को ट्रेस करने के लिए कहा। वहीं हर सिग्नल पर गाड़ियां रोकी जा रही थीं और उन दो बुरखे वाली लड़कियों के बारे में पूछा जा रहा था, लेकिन संयम और जसवंत के उस बॉडीगार्ड ने कब का अपना बुरखा निकाल दिया था और वो विदाउट सिग्नल छोटे रास्तों से होते हुए संयम के अड्डे पर जानवी को लेकर जा रही थीं। उसके साथ वाले आदमी उसकी गाड़ी में नहीं थे, वे सब लोग अलग अलग तरीके से आ रहे थे, कोई बाइक में था तो कोई गाड़ी में और किसी ने रिक्शा कर रखा था ताकि उन लोगों पर किसी को शक न हो। थोड़ी देर बाद ही उस लड़की की गाड़ी एक खंडहर जगह पर आकर रुकी थी, जिसके सामने बस खाली मैदान था। आसपास हरे पेड़ पौधे थे और वो बीच का मैदान ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने क्रिकेट खेलने के लिए बनाया हो। वहाँ काफी ज्यादा छाया थी, इसलिए दोपहर के वक्त भी वहाँ ज्यादा धूप नहीं लग रही थी। जसवंत और संयम दोनों वहाँ चेयर पर बैठे थे। उनके कुछ आदमी आसपास खड़े आपस में बातें कर रहे थे। जसवंत और संयम दोनों के हाथों में उनकी सिगरेट थी। वो मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे कि उन दोनों ने कितना अच्छा प्लान बनाया है। ऊपर से अब तो अद्वैत शेखर भी अमर और जानवी की लाइफ से जा चुका है, यहाँ तक कि वो तो इस शहर से ही बाहर जा चुका है, तो उन्हें अब किसी बात का डर नहीं था। वहीं दीक्षांत ने जैसे ही जानवी के फोन की लोकेशन ट्रेस करनी चाही और वो ऑन हो गई। वो खुशी से चिल्लाते हुए बोला, यस वी गॉट इट। इतना बोलते हुए उसने जल्दी से अमर को भी वो लोकेशन सेंड कर दी। उसके बाद अब उन दोनों की गाड़ी फुल स्पीड से उस तरफ दौड़ रही थी जहाँ से जानवी की लोकेशन आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ जानवी को अपनी आंखों में तेज धूप की चुभन महसूस हुई, जिससे कसमसाते हुए उसने अपनी आंखें खोलकर देखा। सामने से सूरज उसे बिल्कुल अपने सर पर महसूस हो रहा था। उसने जल्दी से अपनी आंखें वापस बंद कर ली। वो वहां उठकर बैठने की कोशिश कर रही थी। वो पूरी तरह से होश में नहीं आई थी, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसका हाथ जैसे ही मिट्टी में लगा, अचानक ही उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने एक झटके से वापस आंखें खोलकर आसपास का नजारा देखा। वो उठकर बैठने लगी। उसकी पूरी पीठ मिट्टी से भरी हुई थी और उसका गला प्यास से सूख रहा था। उसने आसपास नजरें घुमाकर देखा तो चारों तरफ बस आदमी ही आदमी बैठे थे और उनके पीछे बॉडीगार्ड खड़े। सब लोग बस उसे ही घूर रहे थे। ये देखकर जानवी का पूरा शरीर डर से कांप उठा। वो उठी और लड़खड़ाते हुए घूमकर इधर उधर देखते हुए चिल्लाकर बोली, मैं कहाँ हूँ? कौन लेकर आया है मुझे यहाँ? संयम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए डेविल स्माइल करके कहा, यार जसवंत, अब मुझे पता चल रहा है कि अद्वैत शेखर आखिर इस लड़की को लेकर इतना पजेसिव क्यों हो रहा था। अगर उसकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी वही करता। जसवंत भी उसे आंखें दिखाते हुए कहा, खबरदार, आज हम इस लड़की को जान से मार देंगे और अगर इसे छोड़ने की भूल की तो अमर रावत हमें जिंदा चला देगा। इससे अच्छा हम इसे मारकर यहाँ से फरार हो जाएं। इसी में हमारी भलाई है।